आज की बात। दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज हम भारत में इंडिया गठबंधन के सामने मौजूद समस्याओं पर चर्चा करेंगे। अख्तर रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए। भाजपा के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन में आए दिन नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस को लेकर अपना रुख सख्त कर लिया है और अब वो कांग्रेस से बातचीत के लिए अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजेंगी। इधर कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी ममता पर कम हमले नहीं कर रहे थे। पता नहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की क्या पोजीशन है और 2-3 राज्यों को छोड़कर कांग्रेस कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है, लेकिन ये टकराव बुरा है। इससे सामने वाले पक्ष को ये स्पष्ट संदेश जा रहा है कि गठबंधन में फूट पड़ गई है। इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि ममता बनर्जी का जो रुख है या भारत की इस समय जो राजनीति है, टीकाकार उसे किस रूप में देख रहे हैं। यह भी पता चलना चाहिए कि कांग्रेस की बंगाल में संभावना कितनी बची है, एक अनुमान के अनुसार उसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। विचार सुनिए कोलकाता के वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मनी तिवारी के।
जी देखिए, यहाँ पश्चिम बंगाल में तो जो इंडिया ब्लॉक के तीनों सहयोगी दल हैं, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और सीपीएम, तीनों आपस में कहें तो जूतम पैजार में जुटे हैं। एक और ममता बनर्जी कांग्रेस और सीपीएम पर बीजेपी से मिलीभगत के आरोप लगा रही है, तो ये दोनों पार्टियां भी तृणमूल कांग्रेस पर बीजेपी से गोपनीय तौर पर मिलीभगत के आरोप लगा रही है। तो बहुत विचित्र स्थिति है जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है। और ममता बनर्जी ने तो पिछले महीने ही साफ कर दिया था कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में लड़ेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में सिर्फ टीएमसी ही बीजेपी का मुकाबला करेगी। तो उन्होंने साफ संकेत दे दिया था कि वे यहाँ किसी तरह के तालमेल या समझौते के मूड में नहीं है। ममता बनर्जी तो असल में वो चाहती हैं सब 42 में से जितनी ज्यादा सीटें हो सके जीतना, इसलिए वो ज्यादा कांग्रेस को या सीपीएम को छूट देने के मूड में नहीं लगती है। अमित शाह आए थे तो बीजेपी के लिए 35 सीटों का लक्ष्य तय किया था, लेकिन ममता ने तो अपनी पार्टी के लिए 42 सीटों का लक्ष्य तय कर रखा है, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं देना चाहती है। बहुत हुआ तो 2 सीटें जो पिछली बार कांग्रेस जीती थी वो दे सकती हैं, क्योंकि पारंपरिक वोट बैंक तो दोनों का एक ही है। फिर ममता को कई चीजों से थोड़ा डर भी रही है। एक तो न्याय यात्रा राहुल गांधी की आने वाली है, उत्तर बंगाल के कई जिलों से होकर गुजरेगी। दूसरे हाल में उपचुनाव जो पिछले साल हुआ था बहरमपुर में, उसमें कुछ मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंध लगी थी ममता बनर्जी के, कांग्रेस उम्मीदवार जीता था, हालांकि बाद में वो तृणमूल में शामिल हो गया था। लेकिन ममता थोड़ी डरी हुई है, अब तक उनका ये जो अल्पसंख्यक वोट बैंक पूरा मजबूत रहा है, लेकिन इस बार उसमें दरार की आशंका लग रही है उनको। तो ये सब कई चीजें हैं, इसलिए ममता दबाव बना रही है, लेकिन मुझे लगता है आखिर में 2 सीटें छोड़ने पर सहमत हो जाएगी तृणमूल कांग्रेस की। जहां तक सीपीएम का सवाल है, उसकी तो न विधानसभा में कोई सीट है न लोकसभा में, लेकिन जो लाखों की भीड़ जुटाई थी ब्रिगेड रैली में, इसे अगर जो पिछली बार उसके वोट बीजेपी की ओर चले गए थे वो वोटर उसका कुछ हिस्सा भी लौटे, तो कम से कम बीजेपी का राजनीतिक गणित यहाँ गड़बड़ाता है।
अगर इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, यूपी और पंजाब जैसे राज्यों में बात बिगड़ रही है। इन राज्यों में सीटों को लेकर कितना फर्क पड़ सकता है? मुझे लगता है कि 5 से 7 सीटों का असर पड़ता है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी पर जिस तरह कंट्रोल होना चाहिए वैसा नहीं है। ममता ने अपना प्रतिनिधि कांग्रेस से बातचीत के लिए ना भेजने का खुलकर ऐलान क्यों किया?
ममता ने बयान दिया, कहीं ना कहीं कांग्रेस लीडरशिप, मुझे ये लगता है कि उसे अपनी पार्टी पर जितना कंट्रोल जिस तरह से होना चाहिए उस तरह का कंट्रोल शायद नहीं। आप पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, अब यहाँ पर बंगाल में अगर जैसे ममता ने जो कहा है कि भाई हम बात नहीं करेंगे, हम अपना प्रतिनिधि भी नहीं भेजेंगे, जो उनका पोल पैनल है वो बात करने के लिए उससे नहीं भेजेंगे, हमने 2 सीटें हमारे हिसाब से उनकी होती है उतनी कम। पहला सवाल ये उठता है कि उन्होंने पब्लिकली क्यों कहा, प्रेस में ये बात क्यों कही, जिसकी वजह से ये एक होने लगा कि भाई सब खटपट चल रहा है इंडिया गठबंधन में। तो ये तो जानबूझकर कहा, और उसकी वजह उससे पहले अगर आप जाएं, जो अभी ईडी के छापों पर ईडी के लोग जो गए थे उस पर हमला हुआ, तो अधीर रंजन ने भी प्रेस से ये बात कह दी राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। तो क्या अधीर रंजन तो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, क्या उनको ये नहीं समझना चाहिए ये कहने का मतलब क्या होता है, और उसकी वजह सारी चीजें हुई। मुझे नहीं लगता कि वहां कोई बहुत ज्यादा इस तरह की चीज रही होगी पहले से कि ममता बनर्जी नहीं हम दो सीटें ही, ये दो की चार हो सकती है ढंग से बात हो। लेकिन पहली बात तो ये कि कांग्रेस को अपने लोगों को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, सब एक सुर में रहे ना, एक एक पेज पर रहे, सब अलग अलग पेज पे हो जाते हैं वो दिक्कत। जैसे अभी आज नैरेटिव चल रहा है कि साहब कांग्रेस में दो फाड़ हो गया मंदिर को लेकर, ऐसा कैसे सकता है किसी पार्टी में, और क्यों होना चाहिए, और ऐसे मौके पर क्यों होना चाहिए जब आप ये जानते हैं कि भाई देश का पूरा मीडिया, एक पूरा भारी भरकम आईटी सेल, ये सारे लोग आपके पीछे पड़े, छोटी सी चीज को बड़ा करके करते हैं। तो ये और एक आप हाथ जला चुके हैं मध्य प्रदेश में कि एक 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 व्यक्ति जो पार्टी लाइन से अलग होकर के बोला और हल्की बातें बोल गया, उसकी वजह से क्या हुआ, जीता जीता एक राज्य खो दिया। वो राज्य आपके पास होता तो आज शायद ये स्थितियां भी नहीं होती जो कांग्रेस को लेकर के हो रही है, थोड़ा कम होती। तो पहली बात तो ये कि कांग्रेस को मतलब मैं ममता और इनको वो करने की जगह कांग्रेस को अपने नेताओं को, और सीनियर लीडर्स हैं ये सब, अधीर रंजन कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटा छोटे मोटे लीडर है, जो नेशनल फेस है कांग्रेस के उनमें से शामिल है और वो इस तरह से बात कर देंगे। तो एक तो कांग्रेस को ये चीज ठीक करनी चाहिए।
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात इंडिया गठबंधन में मामला कभी कभी अराजकता की हद तक पहुंच जाता है। टीकाकारों का कहना है कि ममता बनर्जी को कांग्रेस के खिलाफ या गठबंधन के खिलाफ इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं थी। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को भी सीमा में रहकर बयानबाजी करनी चाहिए थी। क्या इन बयानबाजियों से बचा जा सकता था, विचार सुनिए वरिष्ठ टीकाकार अनिल सिन्हा के।
मुझको लगता है कि जितना तूल उसको दिया जा रहा है उसके हिसाब से है नहीं, और उनकी स्ट्रेटजी भी हो सकती है। अब वहाँ बीजेपी तृणमूल गवर्नमेंट है, एक जिस तरह से सरकार चलाती है, जिस तरह का उनका तृणमूल कांग्रेस का है, उसमें सीपीएम और उसके जो कार्य प्रणाली है उसमें बहुत फर्क नहीं है। उसी तरह से तृणमूल के कार्य वहाँ पर उसी तरह का वायलेंस है, उसी तरह का ग्रिप है इन एडमिनिस्ट्रेशन पर पार्टी वर्कर्स का, तो उसके खिलाफ बहुत नाराजगी जैसे पहले बनी सीपीएम के गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब लेफ्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, और अंत में उसका नतीजा आपने देखा। तो ऐसे सिचुएशन में जो अपोजिशन का स्पेस है वो अधीर रंजन चौधरी ने रखा हुआ है कांग्रेस के लिए, नहीं तो सिर्फ बीजेपी नजर आती। अभी उसने वो जो शाहजहां शेख के पर ईडी छापे के खिलाफ जो है जो ये होता, उसमें बीजेपी सब जगह कोशिश कर रही है उसको मुद्दा बनाने का। अधीर रंजन चौधरी ने इसका उसका टीएमसी का विरोध करके उस विरोध के स्पेस को लिया है। मैं मानता हूं कि जो वहां की स्थिति है और टीएमसी की जो पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से बंगाल में ट्रायंगुलर पॉलिटिक्स ही होनी चाहिए, नहीं तो सारा स्पेस आप बीजेपी को देंगे। और जो कि हुआ, सीपीएम के वर्कर्स भी गए, कोई सीपीएम में स्प्लिट हुआ क्या, उसके कोई पदाधिकारी नहीं गया, लेकिन उसके वर्कर्स चले गए, वोट कर दिया, क्योंकि उनको टीएमसी रोज उनकी पिटाई करता है, टीएमसी का वर्कर, और हमारा पिटी होता है। आप वहाँ बंगाल में जो पॉलिटिक्स है उसका थोड़ा सा एक परिदृश्य समझने की कोशिश करें, वो बाकी राज्यों की तरह नहीं है। वहाँ जो लोकल ये तालुका वर्कर है, मतलब जो टाउन का और ये गांव में, वो आपस में एकदम वायलेंट क्लैशेस होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो सारा सबको बीजेपी की तरफ भेज देने का कोई अर्थ नहीं है। वो अच्छा किया अधीर रंजन चौधरी ने को उस मुद्दे को उठा लिया, बीजेपी उसको भुना नहीं पाई। वो झंडे लेकर के घूम रही है बीजेपी जगह जगह, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अधीर रंजन चौधरी का जो ये तृणमूल कांग्रेस का विरोध है उससे अपोजिशन का ये जो सत्ता है तृणमूल कांग्रेस की, उसके खिलाफ दूसरे लोग भी हैं।
जहां पश्चिम बंगाल में सीपीएम के साथ कांग्रेस है, वहीं केरल में सीपीएम के खिलाफ कांग्रेस लड़ती है। अगर दोनों न लड़ें तो वो स्पेस कहीं ना कहीं से भाजपा के पास चला जाएगा। ये एक रणनीतिक तरीका भी होता है। क्या ये लड़ने की स्ट्रेटेजी है? विचार सुनिए सीनियर पत्रकार श्रवण गर्ग के।
नहीं, लड़ने की क्या स्ट्रेटेजी होती है साहब? कंसिलिएशन की स्ट्रेटेजी होती है। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को तबाह करना चाहती हैं। वो बहुत दबाव में है और दो तरह से दबाव में है। मुसलमान एन ब्लॉक कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में भी और बंगाल में। 27% मुसलमान है वहाँ, करीबन 3.25 करोड़ मुसलमान है, जो कि कभी काफी बड़ी पॉपुलेशन है बंगाल की, 9 करोड़ की पॉपुलेशन में, 9.25 करोड़ की पॉपुलेशन। और बंगाल के कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो हिला सकते हैं रिजल्ट को। सारे के सारे खिलाफ है ममता बनर्जी। इस समय बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल है। ममता बनर्जी अगर 2 सीटें देंगी, फिर अखिलेश भी कहेंगे हम भी 1 सीट देंगे, और फिर नीतीश कुमार भी कहेंगे कि हम भी 1 सीट देंगे, और शिवसेना भी कहेगी कि हम भी 1 सीट देंगे, क्योंकि इनके कुल, ये बंगाल में 2 सीटें हैं और बिहार में 1 है कांग्रेस की, महाराष्ट्र में 1 है और यूपी में 1 है। ये मामला कांग्रेस को सीटें जीतने का देने का नहीं है, ये मामला इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का है। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की ताकत पर जीतना चाहती हैं, पर कांग्रेस को सीटें नहीं देना चाहती है। मेरा ऐसा मानना है कि ये दबाव में है बीजेपी के। हमको इसको बीजेपी के लिहाज से सोचना चाहिए कि बीजेपी के पास बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और यूपी में 120 सीटें हैं, और कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल की 33 सीटें भी मिला लें तो ये 150 सीटें होती। ममता भी दबाव में है, अखिलेश भी दबाव में है, और पंजाब और अगर दिल्ली की सीटें भी 20 सीटें मिला लें आप, तो आप पाएंगे कि बहुत बड़ा चंक जो है इस समय दाव पर है इंडिया गठबंधन के। राजेंद्र को जवाब ये देना चाहिए, राजेंद्र से हम ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए। कांग्रेस को हाथ ऊंचे कर देना चाहिए सफेद झंडा लेके, वो पहले ही 250 सीटों पर लड़ रही है, और कांग्रेस को कहना चाहिए कि देश हित में हम एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या करना चाहिए कांग्रेस? 543 में से कांग्रेस 250 सीटों पर लड़ रही है, उसके बावजूद कह रहे हैं कि कांग्रेस इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रही है, क्योंकि कांग्रेस जीत ही नहीं सकती है 2 सीटों से ज्यादा। किसने तय कर दिया? ममता अगर दो देना चाहती है, अखिलेश अगर 1 देना चाहते हैं, तो 210 सीटें बीजेपी की झोली में डालना चाहते हैं। बीजेपी के पास अभी 120 सीटें हैं, ये 120 सीटें पंजाब और दिल्ली के साथ, 20 सीटें 140 सीटें और कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल की 33 सीटें 170 सीटें बीजेपी के लिए दाव पर लगी हुई। ये मामला बंगाल का नहीं है। ममता बनर्जी ये तय करना चाहती है कि वो अगर 2 सीट देती है तो फिर अखिलेश भी 1 ही देगा और उद्धव भी 1 ही देगा और नीतीश कुमार भी 1 सीट देंगे। कि ये जो 358 सीटों की यात्रा पर निकल रहे हैं राहुल गांधी, इसमें कांग्रेस के पास सिर्फ 13 सीटें हैं, और वो अपोजिशन को मजबूत करने के लिए निकल रहे हैं, वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नहीं निकल रहे हैं।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।